हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अंबिका ने धीरे से अपना चेहरा उठाकर वेदांश के चेहरे की तरफ देखा और कहा, अभी कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन छोड़ो, मुझे क्या हो गया है? तुम्हें आज ऐसी अजीब बातें क्यों करनी पड़ी? आज से पहले तो कभी तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो फिर आज जरूर कोई बात है? वेदांश ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हें बताने वाली एक भी नहीं है। अंबिका ने भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, मुझे क्यों नहीं बता सकते? वेदांश ने बहुत ही धीरे से अंबिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर बेड तक आया और अपने सामने बिठाते हुए बोला, अरे वो सब ऑफिस और किम से रिलेटेड है ना, वैसे भी तुम उसमें क्या हेल्प कर पाओगी, और वो सब वैसे भी बस टेम्प्रेरी है, कुछ टाइम के लिए ही। अंबिका ने भी उससे ज्यादा जोर देकर नहीं पूछा। फिर वेदांश ने उसे अपने एकदम करीब खींच लिया और अपने ऊपर ही लिटा लिया। वेदांश खुद बेड पर बैठा हुआ था और अंबिका का सर उसके चेस्ट पर था। वो एक तरह से उसके गोद में बैठी हुई थी, उसके ऊपर आधा लेटी हुई थी। अंबिका ने भी कुछ नहीं कहा और वेदांश की कमर को पकड़ते हुए इस तरह उसके ऊपर लेटी रही। अंबिका समझ गई थी कि कोई तो टेंशन वाली बात है, लेकिन वो फिलहाल वेदांश के इतने करीब लेटकर उसके दिल की धड़कनों को सुन रही थी और कुछ नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था वेदांश जैसे इंसान की जिंदगी में तो कुछ न कुछ सियापा लगा ही रहता होगा। उसकी लाइफ में भला कभी शांति होगी? इसलिए जो कुछ सुकून के पल उन दोनों को साथ में मिले थे, वो दोनों ही उसे पूरी तरह से जी लेना चाहते थे। वेदांश ने धीरे से उसके माथे पर किस किया तो अंबिका की आंखें हल्के से बंद हो गईं और वो दोनों अभी भी वैसे ही लेटे हुए थे। अब वेदांश का दिमाग भी थोड़ा सा शांत हो चुका था, अंबिका को भी अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने भी उठने की कोशिश नहीं की और उसी तरह से लेटी रही। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सार्थक सावंत रोज की तरह टाइम पर अपने एरिया के पुलिस स्टेशन पहुंचा। अभी कुछ महीने पहले ही वो सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बना था और वो थाना उसके अंदर ही आता था। वो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार और सीरियस था। उसके चेहरे पर हल्की थकान के बावजूद काम के प्रति जुनून साफ झलक रहा था। वो जैसे ही अपने ऑफिस में जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा, उसका जूनियर सब इंस्पेक्टर अमोल शिंदे उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। सर, आपको कुछ जरूरी बात बतानी है, अमोल ने हड़बड़ाते हुए कहा। सार्थक ने उसकी तरफ एक नज़र देखते हुए पूछा, क्या हुआ अमोल, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तो बस अभी आया हूँ, आराम से बता देना जो भी बताना है। अमोल ने उसी तरह उसके पीछे आते हुए कहा, अरे सावंत सर, वो आज बड़े साहब यानी डीआईजी साहब आए हुए हैं, सुबह सुबह सीधे हमारे पुलिस स्टेशन पर आए हैं। सार्थक थोड़ा चौंक गया, डीआईजी साहब का अचानक आना कोई मामूली बात नहीं थी, उन्होंने कभी इस तरह बिना सूचना के उनके पुलिस स्टेशन का दौरा नहीं किया था। ये सुनते ही सार्थक की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। डीआईजी साहब, उसने एक पल रुक कर कहा, उन्होंने कोई खास वजह बताई?
नहीं सर, अमोल ने जवाब दिया, लेकिन वो किसी के इंतजार में थे, शायद आपसे कुछ बात करनी है।
सार्थक ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए अपने कदमों को तेज किया। डीआईजी से मुलाकात हमेशा एक सीरियस मैटर होती थी, खासकर तब जब पहले से इन्फॉर्म किए बिना ही वो पुलिस स्टेशन आ धमकते थे। जैसे ही सार्थक डीआईजी के केबिन के बाहर पहुंचा, उसने दरवाजा हल्के से खटखटाया और अंदर जाने की परमिशन मांगी। अंदर आओ इंस्पेक्टर, अंदर से कड़क आवाज आई। सार्थक ने दरवाजे को खोला और तुरंत उन्हें सैल्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर, इंस्पेक्टर सार्थक सावंत रिपोर्टिंग। डीआईजी साहब, जो अपनी कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे, ने सार्थक की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें भी एक प्रकार की सख्ती छुपी हुई थी। सार्थक, डीआईजी ने सीधा कहा, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ खास है। उन्होंने एक सफ़ेद लिफाफा सार्थक की ओर बढ़ा दिया। मैं खास तौर पर आज तुमसे मिलने ही आया था। सार्थक ने लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन उसे खोलने से पहले डीआईजी के चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस दिखे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला और अंदर का कागज पढ़ा। उसकी भौहें अचानक ही ऊपर चढ़ गईं। ट्रांसफर ऑर्डर, उसने चौंकते हुए कहा। सर, मेरा ट्रांसफर मुंबई से पुणे क्यों किया जा रहा है, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? डीआईजी ने एक पल को कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें तो खुद ही वजह पता होनी चाहिए सार्थक, आखिर हमारे डिपार्टमेंट के इतने काबिल और समझदार ऑफिसर जो हो तुम। डीआईजी ने बात को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए कहा तो सार्थक को कुछ समझ नहीं आया। उसके चेहरे पर उलझन के भाव साफ नजर आ रहे थे। वो जानना चाहता था कि आखिर किस वजह से उसे ट्रांसफर किया जा रहा है, खासकर तब जब वो अपने काम में कोई कमी नहीं रख रहा था। सर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या?
सार्थक ने सवाल किया। डीआईजी ने अब अपनी कुर्सी से उठते हुए गंभीर लहजे में कहा, बड़े लोगों से उलझने से पहले 10 बार सोचा करो सार्थक, तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है, लेकिन उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखो, नहीं तो ट्रांसफर और सस्पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो बस शुरुआत है, आने वाले 30 और साल नौकरी करनी है या नहीं तुम्हें? सार्थक ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे कुछ तो समझ आ गया था अब, लेकिन फिर वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में अब सवालों के साथ गुस्सा भी था। बहादुरी दिखाना अच्छी बात है, डीआईजी ने आगे कहा, लेकिन सही जगह पर दिखाओ, वरना बहादुरी और बेवकूफी में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। इतना कहकर उन्होंने सार्थक के कंधे पर हल्की सी थपकी दी। ध्यान रखना, तुम्हारे अगले कदमों का अंजाम क्या हो सकता है। सार्थक ने अपने होंठ भींचे, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो समझ चुका था कि ये ट्रांसफर वेदांश ठाकुर की देन है, क्योंकि फिलहाल उसे और कोई याद नहीं आया था। उससे उलझने का मतलब ही यही था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, और अब यही हो रहा था। डीआईजी साहब ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम समझदार हो सार्थक, उम्मीद है कि आगे से सोच समझकर कदम उठाओगे। इतना कहकर डीआईजी ने उसे आखिरी बार देखा और अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। सार्थक वहीं खड़ा रहा, उसके हाथों में ट्रांसफर ऑर्डर था और दिमाग में वेदांश ठाकुर का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया, उसने दांत भींचते हुए मन ही मन कहा, वेदांश ठाकुर, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब उसे इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी थी। वेदांश ने उसकी जगह बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी जगह से हटने वाला नहीं था। वो जानता था कि इस खेल में अब उसे बहुत सावधानी से चलना होगा, लेकिन अब ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। सार्थक ने ट्रांसफर ऑर्डर को मोड़ा और गहरी सांस लेते हुए कसम खाई, अब ये खेल मैं अपने तरीके से खेलूंगा वेदांश, तुमने बेवजह मुझे उलझाने की कोशिश की है। पहले तुमने मेरे प्यार, मेरी अंबिका को मुझसे छीना, और अब मेरी नौकरी, मेरा पहला प्यार भी मुझे छीनना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सब बोलता हुआ वो वहाँ पर खड़ा रहा और उसके आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गुस्से में उसने सामने रखी हुई लकड़ी की मेज पर अपना हाथ मारा, जिससे कि उस पर रखा हुआ पेपर वेट, कुछ पेपर्स, पेन और बाकी सारा सामान इधर उधर होकर जमीन पर गिर गया। वेदांश के बारे में सोचते हुए सार्थक ने गुस्से में अपने दांत पीस कर कहा, वेदांश ठाकुर, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब उसे इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी थी। वेदांश ने उसकी जगह बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी जगह से हटने वाला नहीं था। वो जानता था कि इस खेल में अब उसे बहुत सावधानी से चलना होगा, लेकिन अब ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। सार्थक ने ट्रांसफर ऑर्डर को मोड़ा और गहरी सांस लेते हुए कसम खाई, अब ये खेल मैं अपने तरीके से खेलूंगा वेदांश, तुमने बेवजह मुझे उलझाने की कोशिश की है। पहले तुमने मेरे प्यार, मेरी अंबिका को मुझसे छीना, और अब मेरी नौकरी, मेरा पहला प्यार भी मुझे छीनना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सब बोलता हुआ वो वहाँ पर खड़ा रहा और उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गुस्से में उसने सामने रखी हुई लकड़ी की मेज पर अपना हाथ मारा, जिससे कि उस पर रखा हुआ पेपर वेट, कुछ पेपर्स, पेन और बाकी सारा सामान इधर उधर होकर जमीन पर गिर गया। वेदांश के बारे में सोचते हुए सार्थक ने गुस्से में अपने दांत पीस कर कहा, वेदांश ठाकुर, तुमने मेरी नौकरी छीनने की कोशिश की है और मेरा ट्रांसफर करवाने की, इस रुकवाने के लिए अब मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब यहीं रहना है। इसी शहर में बहुत सारे अधूरे काम हैं जो पूरे करने हैं, उन्हें पूरे किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारी जिंदगी से दूर तो बिल्कुल भी नहीं, तैयार हो जाओ वेदांश ठाकुर।
क्या लगता है आप लोगों को, सार्थक के ट्रांसफर के पीछे सच में वेदांश का हाथ है या फिर सार्थक को हो रही है कोई गलतफहमी? और इस गलतफहमी में क्या वो बन जाएगा वेदांश का सबसे बड़ा दुश्मन? और क्या सच में वो अंबिका से प्यार करता था? क्या अंबिका को इस बारे में पता है या फिर नहीं? आप लोगों को क्या लगता है, सार्थक अंबिका को वेदांश से छीन पाएगा या फिर नहीं, बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा ये आज का एपिसोड और ट्विस्ट?